यह प्रवचन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया श्री राधा राधिका मंदिर पंजाबी भाग में श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 331 दिनांक 7/5/2014 हरे कृष्ण।
शब्दार्थ
गुरु शुश्रया प्रमाणित गुरु की सेवा द्वारा भक्तया श्रद्धा तथा भक्ति से सर्व समस्त लब्ध भौतिक लाभों के अर्पणेन अर्पण से तथा संगेन संगति से
दोनों का शब्द दोनों का शब्द दोनों का क्या
भगवान की कथाओं में
कर्मों
मनुष्यों को प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के हर्ष विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पिछले श्लोक में बताया गया है कि जिस विधि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम तथा स्नेह तुरंत बढ़े वह इस भव बंधन से मुक्त होने के हजारों उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया है धर्मस्य तत्त्वं निहितं भूयः। वास्तव में धर्म के सिद्धांतों का सत्य अत्यंत गुह्य होता है, फिर भी यदि कोई धर्म के नियमों को वास्तव में स्वीकार कर ले तो इसे सरलता से समझा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्। धर्म की विधि परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित है क्योंकि वे परम सत्ता है। पिछले श्लोक में भी इसे भगवद्गीता शब्द द्वारा सूचित किया गया है। भगवान के आदेश अचित हैं और उनके लाभ पूर्णतः निश्चित हैं। उनके आदेश अनुसार धर्म का पूर्ण स्वरूप भक्ति योग है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भक्ति योग का अभ्यास करने के पूर्व प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में उपदेश देते हैं गुरुपाद अश्राय, अर्थात मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि गुरु प्रमाणित गुरु स्वीकार करे। छात्र या शिष्य को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए, उसे सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। गुरु शुश्रया शब्दों का अर्थ यह है कि वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके जैसे स्नान करते वस्त्र बदलते सोते खाते समय सहायता पहुँचा कर उनकी सेवा करे, यह गुरु शुश्रया कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उनके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। प्राण अर्थ वाचा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन संपत्ति बुद्धि तथा वाणी होती है और इन सबों को गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गुरु को सब कुछ कर्तव्य के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, किंतु यह भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बनावटी ढंग से नहीं अपितु हृदय से की जानी चाहिए। यह भेंट अर्पण कहलाती है। इसके साथ ही शिष्टाचार सीखने तथा भक्ति का समुचित आचरण करने के लिए उसे भक्तों तथा संतों के साथ रहना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि गुरु को जो कुछ भी अर्पित किया जाए वह प्रेम तथा स्नेह पूर्वक किया जाए, भौतिक स्तवन के लिए नहीं। इसी प्रकार यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य भक्तों की संगति करे किंतु उसे तनिक विवेक से काम लेना चाहिए। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत सदृश जैसा होना चाहिए, साधवा सदाचार। जब तक वह आदर्श आचरण में दृढ़ नहीं रहता उसका साधु पद पूर्ण नहीं है। अतएव एक वैष्णव या साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ और पूर्ण रहना चाहिए। श्री रूप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उनकी सेवा की जानी चाहिए और तथा स्तवन किया जाना चाहिए, किंतु यदि वह संगति के उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। अनुवाद एक बार सुनिए। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्चलिंगों की पूजा करनी चाहिए।
ओम ज्ञानं मे अंदस्य श्रीचैतन्य मनोवैष्णव स्थापकामेन भूतले स्वयं रूपा करामय्यं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्रीरूपां सारिजातं सकलधर्मात्मानुपमं सजीवम् श्लोकों का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं और यू नो योर माइंड सिटिंग अ लिटिल बिट इन द बैक ओके And I'm just like a voice, the translator's voice reaching my ears. It's okay. Just be a little soft. तो इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि प्रहलाद ने क्या शिक्षा ग्रहण की माता के घर में. हिरण्यकशिपु, अगर आपसे पूछा जाए हिरण्यकशिपु का परिचय तो आप शायद कहोगे असुर. वो थे हृदय में भगवान के भगवान की लीला को मधुर बनाने के लिए उन्होंने असुर का रोल स्वीकार किया था. हिरण्यकश्यप पर्वत मंदारा चला पर्वत में जाकर यज्ञ कर रहे थे, बड़ी गहरी यज्ञ. अपने पाँव के अंगूठे पर खड़े हुए थे, हाथ को ऊपर रखते हुए 100 देवताओं के वर्षों के लिए हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर होते हैं. और 100 देवताओं के वर्षों के लिए उन्होंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया. तो कितनी गहरी तपस्या. तो प्रहलाद उस समय माता के घर में थे और जो देवता थे दुखी हो गए थे हिरण्यकश्यपु की तपस्या से. जब तपस्या का उद्देश्य क्या था कि हिरण्यकश्यपु को ऐसा वर प्राप्त हो कि कभी मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो इंद्र और दूसरे देवता गए हिरण्यकश्यप के महल में, और यहाँ प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, कयाधु को ये जा रहे थे घसीट कर स्वर्ग इस भावना से कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसका वध कर दिया जाएगा। वो सोच रहे थे कि जैसा बाप है वैसा बेटा भी बनेगा, जैसा बाप जैसे बेटा कहते, और इसलिए इनका ये भाव था जैसे बच्चा पैदा होगा उसका वध कर दिया जाएगा। जैसे वो ले जा रहे थे घसीट कर, वहाँ नारद मुनि पहुँच गए, और नारद मुनि ने कहा क्या कर रहे हो? देवताओं ने कहा हम श्रीमती हिरण्यकश्यप को घसीट कर ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके घर में एक बहुत बड़ा राक्षस है। नारद मुनि ने कहा इस औरत के घर में राक्षस नहीं, बहुत ऊंचे कोटि का भक्त है। नारद मुनि के कहने पर इंद्र देवताओं ने प्रहलाद की माँ को छोड़ दिया, और हिरण्यकश्यप और नारद मुनि ने अपने आश्रम में प्रहलाद की माता को शरण दी। हिरण्यकश्यप पर नारद मुनि ने कहा जब तक तुम्हारा पति नहीं लौटता तो मेरे आश्रम में विराजमान रहो। और नारद मुनि का तो एक ही भाव रहता है, हरि को नारायण का उपदेश दिया जाए, चाहे मृगारी शिकारी हो या ध्रुव महाराज हो या चाहे प्रहलाद महाराज हो। तो नारद मुनि ने अपने प्रहलाद की माता को बड़ा गहरा उपदेश दिया, और माता तो भूल गई समय के साथ, पर प्रहलाद नहीं भूले। प्रहलाद के पिता जैसे आप पढ़ते हो सातवें स्कंद में, कभी ये समझ नहीं पाए कौन आता है मेरे बेटे को दिव्य ज्ञान देने के लिए। संत और अमर का प्रहलाद के दो अध्यापक थे, तो हिरण्यकश्यप ने इंदु को बुलाकर पूछा, कहा कौन क्या कर, कौन मेरे बेटे को आकर शिक्षा दे रहा है? संदर मरकर ने कहा हमें मत डांटो, हम ब्राह्मण हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि प्रहलाद को कौन आता है शिक्षा देने के लिए। हिरण्यकश्यप का भय था, हिरण्यकश्यप सोचते थे कि वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे को दिव्य ज्ञान देने के लिए। और ये ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था कब, जब माता के घर में थे, वो भूले नहीं। इससे ये भी प्रमाण मिलता है कि हमारा जन्म आरंभ होता है माता के घर में, तो जो लोग गर्भपात इत्यादि करते हैं वहाँ पाप कर रहे हैं। तो ये दो श्लोकों का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज अपने साथियों को शिक्षा दे रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि प्रहलाद महाराज अपने साथियों को शिक्षा दे रहे थे। जो भगवान के भक्त हैं वो हर स्थिति में हर अवसर का लाभ उठाते हैं भगवान का संदेश आगे पहुंचाने के लिए, और प्रहलाद महाराज अपने साथियों को आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज इस अध्याय में हमें ये शिक्षा दे रहे हैं जो कि उन्होंने नारद मुनि द्वारा ग्रहण की थी। तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, और श्रद्धा और भक्ति से सेवा करनी चाहिए। तो यह आप देखोगे कि प्रहलाद महाराज ने कहा है प्रमाणिक गुरु, बोनाफाइड गुरु। ये नहीं कि कोई व्यक्ति भी कहे मैं हूँ गुरु, मेरा आदेश का पालन करो। और प्रमाणिक गुरु का क्या कौन क्या लक्षण, रूप गोस्वामी जी कहते हैं उपदेशन में, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार परस वेगम। उनको मन और बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। ये नहीं कि वो खुद इंद्रियों के दास हैं और दूसरों को आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रमाणिक गुरु है वो सदा वही उपदेश देता है जो कि शास्त्रों पर में है, शास्त्रों के आधार पर। जैसे अगर आप श्री प्रभुपाद जी की शिक्षा को देखो तो आप देखोगे कि प्रभु 100% निर्भर थी शास्त्रों पर। जब प्रभुपाद जी अमेरिका भी गए थे पहली बार तो उस समय काफ़ी सन्यासी स्वामी भारत से जाते थे प्रचार के लिए या धन कमाने के लिए। तो एक दिन इन सब ने प्रभुपाद जी से एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप तो नए आए हो, आपके संदेश को यहाँ कोई नहीं सुनेगा, आप इतने कड़क नियम इत्यादि मत दो। तो प्रभुपाद जी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जो प्रमाणिक गुरु है वो मन बुद्धि इंद्रियों पर वश रखता है और वही संदेश देता है जो कि परंपरा में आ रहा है। इमाम परंपरा सप्तम ईमान राजस्वी जो परम, और ये परंपरा आरंभ होती है किससे? परम भगवान से। जैसे आप इस कर्म में जो भी शिक्षा प्राप्त करते हो ये परंपरा द्वारा आ रही है। और हमें भक्ति और श्रद्धा से इसका पालन करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति बढ़ती कैसे है? नियमों के पालन के द्वारा। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे भगवान हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी अगर आप हरिनाम का उच्चारण करोगे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास करोगे तो फिर सफलता भी प्राप्त कर सकोगे। आगे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास जो भी हो वो गुरु की शरण में उपयोग करना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ? अब कोई कहेगा ओ ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम गुरु बनेंगे सबकी संपत्ति हमारे जेब में आएगी, हम कई बैंक अकाउंट खो पाएंगे। नहीं, इसका अर्थ यह है कि अगर आप अर्पण करो कुछ तो गुरु आगे क्या करता है? भगवान की सेवा में लगाता है, ये नहीं कि अपने सुविधा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी जो भी सुविधा भगवान ने दी सबका उपयोग किया, किस लिए? भगवान के मंदिरों बनाने में, ग्रंथों को प्रकाशित करने में। कहने का तात्पर्य यह है जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हमें हर गुण, हर योग्यता, हर संपत्ति, हर वस्तु का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो आगे कहा गया है और भक्तों की संग में रहकर हमें परम भगवान का गुणगान करना चाहिए, साधु संग। तो शास्त्र में कहा गया है साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का लावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धि का। ये महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों की संगत में रहें। प्रभुपाद जी ने यह अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संस्था की स्थापना की है जिसमें हम सबको मौका मिलता है क्या? भक्तों की संगत में रहने के लिए। साधु संगत के बिना आध्यात्मिक जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। शास्त्र में इस विषय पर बार बार बल दिया गया है क्या? इस साधु संगत में रहना चाहिए। और कौन सी संगत से बचना चाहिए? सत्संगत आगा वैष्णव। भौतिक भजन की संगत उतना ही ग्रहण करो जितना कि आवश्यक हो। आप कहोगे हम हमेशा तो साधु संगत में नहीं रह सकते, आपने दफ्तर जाना है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करना है, तो इसलिए अभक्तों की संगत में उतना ही रहो जितना कि आवश्यक हो और जितना हो सके साधु संगत में रहो। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की विधियों पर उपदेश दिया रूप और सनातन गोस्वामी को। रूप और सनातन दोनों एक समय उस समय के सबसे प्रसिद्ध धनी राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर दोनों भाइयों की रुचि नहीं थी इस कार्य में। तो पहले रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें प्रयाग में आध्यात्मिक उपदेश दिया, तो फिर सनातन गोस्वामी ने भी नौकरी त्यागी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, भक्ति की अनेक विधियों में पांच सबसे महत्वपूर्ण है, इन पांच में सबसे पहला क्या था? साधु संगत। साधु संगत बहुत आवश्यक है, और जब हम भक्तों की संगत में रहें हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि हम साधु संगत में रहें और केवल दोषों को देखें, हमें गुणों को देखना चाहिए, पर अगर कुछ कमी हो तो आदर के साथ उसको भी सुधार सकते हैं। तो साधु संगत में रहोगे तो सदा सुनते रहोगे क्या हरि नाम की महिमा। इसलिए सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने साधु संगत का अपने नामा कीर्तन, साधु संगत में रहोगे तो फिर ये इच्छा भी होगी कि हरि नाम की महिमा भी सुनते आओगे। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि साधु के संगत में रहकर हमें परम भगवान का गुणगान करना चाहिए, साधु की संगत में रहकर भगवान के गुणों का विषय में सुनना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया जो कि उन्होंने नारद मुनि द्वारा ग्रहण किया था, और प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, प्रहलाद के पिता विश्वनारायण मणिकर ने कहा था, हमने अभी आपके बेटे का दिमाग बिल्कुल बदल दिया है। पिता ने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा, अनेक विषयों में से सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है जो तुमने सीखा पाठशाला में? और प्रहलाद ने क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेनम आश्रम दर्शनम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम और कीर्तनम, श्रवणम और कीर्तनम की महिमा का ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? साधु संगत में मिलता है। तो साधु संगत की बहुत आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, बड़े प्रसिद्ध मायावादी सर्वम भरचार्य को उन्होंने वैष्णव बना दिया था, और फिर उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने से पहले सर्वम भरचार्य ने उन्हें कहा, बताया था, जब दक्षिण भारत में जाओगे वहाँ आपको एक बड़ा प्रसिद्ध भक्त रामानंद रॉय मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद रॉय को मिले गोदावरी नदी के तट पर, और उनसे उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, भक्त भगवान की महिमा बढ़ाते हैं, और अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि इस विश्व में सबसे कठिन स्थिति क्या है, सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाली कौन सी स्थिति है? और रामानंद रॉय ने क्या कहा, भक्तों की संगत से, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना। तो भक्तों की संगत से जुदा हो जाओ ये बड़ी कठिन स्थिति है भक्त के लिए। तो इसलिए शास्त्र में आप बार बार पढ़ते हो क्या, साधु संगत साधु संगत। नारद मुनि इस विषय पर उपदेश देते हैं ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज महल छोड़कर जंगल में जा रहे थे भगवान को खोजने के लिए, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनका अपमान किया था। तो नारद मुनि ने देखा ये बड़ा श्रद्धालु भक्त है, तो वहाँ ठीक समय पहुँच गए। तो नारद मुनि ने कहा कि हम तीन प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है उनके साथ जो भक्ति में आपसे आगे हैं, मोर एडवांस। दूसरा है जो आपके बराबर के हैं। तीसरा है जो भक्ति में आपसे पीछे हैं, या आपसे कम ज्ञान रखते हैं। तो नारद मुनि ने हमें कहा, उपदेश दिया है किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए इन तीन परिस्थितियों में। तो नारद मुनि कहते हैं कि जब आपका, जब आप उनसे मिलो जो भक्ति में ज़्यादा एडवांस हैं, तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। और इस विषय पर भागवतम के 10वें स्कंद में एक उदाहरण प्राप्त होता है, यहाँ ये बताया गया है। इस प्रकार मोर, पीकॉक, जब बादल देखता है पहली बार बारिश के मौसम में तो खुशी में नाचता है, उसी प्रकार भागवतम में कहा गया है कि जब हमें एडवांस भक्तों की संगत मिले हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस संगत में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके उपयोग से आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। तो ये होना चाहिए भाव। फिर अगली प्रकार की संगत है आपके बराबर के, आपके समान, आपके बराबर के एडवांसमेंट के लोग। जब आप अपने बराबर के भक्तों को मिलते हो तो उनसे क्या भाव होना चाहिए? मित्रता का भाव। मित्रता का भाव का अर्थ क्या है? कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हरिनाम करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर में सुबह क्लास होती है, शाम को क्लास होती है, तो हम एक साथ बैठकर सुनते हैं, एक साथ बैठकर जाप करते हैं, एक साथ हरिनाम में जाते हैं, एक साथ प्रचार में जाते हैं। ये है मित्रता। भौतिक समाज में मित्रता का अर्थ है हम एक दूसरे का सहयोग करें, किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए। पर आध्यात्मिक जीवन में मित्रता का अर्थ है कि आप एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करें, हम भगवान की सेवा में जुड़ें। यह है असली मित्रता, जहाँ हम मिलकर भगवान की सेवा करते हो। और तीसरी परिस्थिति क्या है? जब उन्हें मिलते हो जो भक्ति में आपसे लेस एडवांस हैं, हाँ, तो उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? क्या व्यवहार? उनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए। उन जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं तो हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हम उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दें, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को सुखी बना सकें। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा?